مودی نبی گاتھاؤں کا پاٹھ کر رہے تھے، خاص کر گاتھاؤں اور کلسوں کا، دو باتوں پر بہت وزن دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جب تم سے ہم نے کئی بار کہہ دیا کہ مکتی کے مارگ میں کرم کا کوئی کام نہیں ہے، کرم کا ابھاؤ ہی ہے، تو پھر تم بار بار پن اور پاپ کی بات بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ کیونکہ پن اور پاپ دونوں کرم کے بھید ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ اسپشٹ شبدوں میں کہہ دیا تم بیچ میں پن کی بات کیوں لاتے ہو۔ دوسرا مہتوپورن ترک یہ ہے کہ جب جو بند کے کارن ہیں وہ سب بند روپ ہیں، اور جو موکش کے کارن ہیں وہ سب موکش روپ ہونی چاہیے، ایک نیم ہے۔ تو جب موکش سویم آنند روپ ہے تو اس کا مارگ بھی آنند روپ ہونا چاہیے، اور ہم موکش کے مارگ میں آئیں اور ہماری تکلیفیں بڑھیں کیوں؟ بہت پھر ہم برتادک میں جائیں، انورتوں میں، مہاورت میں، مانے چھت میں، پانچ میں، چھت میں، گنستان میں ہوں، تو ہمیں بہت تکلیفیں دیکھیں گے، بھیا ہمارے بس کی تو وہ نہیں ہے، جتنی تکلیف اس میں ہے اسے کرنا ہمارے بس کی نہیں ہے، اتنی گرمی، اتنی سردی، اتنی بھوک پیاس، فنڈامینٹلی گڑبڑ ہو گیا نا۔ کہ تجھے موک سے مارگ جو ہے وہ دکھ روپ دکھ رہا ہے، کشٹ روپ، اور موکش سکھ روپ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ موکش سے بھی سکھ روپ ہے تو اس کا مارگ بھی سکھ روپ ہونا چاہیے، تو وہ تو سکھ روپ ہوگا ہی نا، سمبھ نجرا مارگ ہے نا، اور شاستر میں بھی لکھا ہے نا کہ بھائی پہلے گنستان سے چوتھے گنستان میں آتے نا سیدھے، تو اس کے بہت سکھ ہے، یہاں تک کی لکھا ہے کہ یو چند نج میں پھر بھائی جن اکت جو آنند لہو سو اندر ناگ نریندر باہی مندر کے نہیں کہو، پر جو جو آگے بڑھیں گے کیوں کیوں وہ آنند کی وردھی ہونی چاہیے، یہ بھی اس کی ایک لکشن ہے، پریبھاشا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں دکھ کی وردھی ہوتی جائے اور وہاں ایک دم پھر آنند میں ہم پہنچ جائیں۔ پیسہ بڑھ گیا، آپ ارب پتی ہوتے ہو تو دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، لکھ پتی سے کروڑ پتی ہوتے ہو ایسے بڑھتا ہے نا، گھرتے گھرتے ایک دم پہنچ جائیں گے، وہ تو اکیلا کیول گیان ہو سکتا ہے ایسے، تو تھوڑے تھوڑے گیان گھرتے گھرتے کہاں پہ پہنچتا ہے، پریا نام کا گیان جو نیویا کا، اور پورا گھر جائے تو کیول گیان ہو جاتا ہے، آتا ہے نا تاجوار تک میں۔ لیکن موکش کے مارگ میں سکھ کی پراپتی اور سکھ کی وردھی روپ موکش مارگ ہونا چاہیے، اور جب جب تم شراوک دھرم، منی دھرم، دونوں پانچواں گنستان سمجھ، چوتھا پانچواں دونوں شراوک دھرم، اور پھر منی دھرم چھٹ میں سے لے کر کے گیارہویں تک، بارہویں تک، ابھی تیرہواں چھوڑ دو، کیونکہ وہ تو آنند سکھ روپ ہے، ہم نے پڑھا ہے تو اسے تو ہم دکھ روپ نہیں مان سکتے ہیں، ان سب یہ سب تو ہمیں کشتی کشتی روپ دکھتے ہیں، جنگل میں ورنن بھی کرتے ہیں تب تو منیوں کے اندر کے آنند کا ورنن نہیں کرتے، ان کی کشتوں کا ورنن کرتے ہیں، یا ہم چتر بھی لگاتے ہیں نا، جن کے ماتھے پہ سگڑی جلائی گئی تھی، جنہیں شیرنی نے کھایا تھا، جنہیں سیارنی نے کھایا تھا، انہی منی راجوں کے ہمیں چتر لگاتے ہیں۔ دو اینگل سے اس بات کو سوچا جا سکتا ہے، پہلے تو میں آپ کا پکش رکھتا ہوں کہ ہمیں جو سمادھی مرن لینے والے ہیں، دھرم کے مارگ میں چلنے والے ہیں، اور ان پر کوئی تکلیف آ گئی ہو تو ان کو ہم دھیری بنانے کے لیے ان کو چنتے ہیں، किसी कहते हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और ऐसे में रहना गर्मियों में क्यों, जंगल में लू चलती हो तो बहुत कठिन काम है। तो हम समझाना चाहते हैं कि गज कुमार मुनि के माथे पे तो सिगड़ी रख दी थी, तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। अब गर्मी लग रही हो तो उसे ऐसा समझाते हैं, यदि कोई कीड़े मकोड़े काट रहे हो, वो कहता है मेरे को सारा शरीर में चिंटी जैसी काट रही, तो हमने देखा है ना कहीं कोई चिंटी मिंटी नहीं है, होता नहीं ऐसा कि नहीं मुझको ऐसा लगता है कि चिंटी काट रही एकदम। तो कहते हैं देख वो वे मुनिराज, उन्हें तो शेर खाए साक्षात, तुझे तो लगता है काट नहीं रही, तुझे लगता है और वहां साक्षात तीर फाड़ के खा रहे हैं, तो इसलिए हमने वो चित्र लगाए। क्या अब मैं दूसरा एंगल कहता हूं, थोड़ा खतरनाक है कि उपसर्ग क्यों होता है किसी पर, पुण्य के उदय से या पाप के उदय से। तो सब पाप के उदय वालों को ही तुमने चुना है? जो एकदम आनंद में मग्न है, शीतल संधि संधि हवा चल रही है, एकदम पुण्य का योग है, तो कोई उन पर उपसर्ग नहीं हुआ, एक आध उनको चुन लेते तो क्या दिक्कत थी। सोचने का तरीका है, सोचो आप, मैं हम मान रहे कष्ट है और तुझे तो अभी थोड़ा ही है और अभी तो ज्यादा हो सकता है, और जो नरक में जाएगा तो कितनी गर्मी लगेगी, अभी तू कौन सी गर्मी से घबरा रहा है, तो ऐसा सोच सोच के गर्मी से बर्दाश्त करने से धर्म हो जाएगा है? वो जो एंगल है ये मैं नहीं कहता हूं, वो है जिनवाणी में और समय समय पर हम उसका उपयोग भी करते हैं और हमें करना भी चाहिए, ख्याल में है ना। लेकिन हमको वो आनंद रूप है, मुक्ति का मार्ग पूरा आनंद रूप है, हमें इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये तो मुक्ति के मार्ग में जाने से ये सब घबराते हैं और फिर और हमें ये बता बता करके उनके भय को और ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं क्या, जबकि फैक्ट बिल्कुल इससे उल्टा है। चौथे उन्नीस स्थान से पांच में से छठ में सात में से आठ में ऊपर, अभी जो लोग सात में से ऊपर नहीं जाते हैं तो आगे इससे वो दशा ज्यादा सुखरूप है ना। छड़ाला में गुरुदेव फरमा रहे थे, अभी वहां तक आए नहीं है, आएंगे, कि जो धर्म ध्यान आनंद रूप मैंने लिखा सिद्ध भगवान की जयमाला में, उसको माना मैं दुख स्वरूप। जो धर्म ध्यान आनंद रूप उसको माना मैं दुख स्वरूप, वो तो आनंद रूप था, क्योंकि इसमें बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। तो एक ये बात हमारे एक एंगल भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि ये प्रतिकूलताएं तो पुराने पुण्य पाप के उपयोग के अनुसार हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता है, वो कोई मुनि धर्म का दोष नहीं है। वो उपसर्ग होना, माथे पर सुगड़ी रखी जाना, ये मुनि धर्म के स्वरूप में शामिल नहीं है। स्वरूप है क्या, यदि स्वरूप होता तो हरेक के माथे पर सुगड़ी रखी जब वो मोक्ष होता उसे, क्या ये तो बिल्कुल बाहर की चीज है। अब मैं इससे भी अगली बात कहना चाहता हूं कि जब वो कौरव पांडवों को लोहे के गरम पहना रहे थे ना गहने, जब वे जल रहे थे, तो जब वे जब बिल्कुल अनुकूलता होगी बाहर की, तब तो भी आनंद सुख रूप थे ही, आनंद में थे ही, लेकिन जब वे जल रहे थे तब तो बहुत तकलीफ में थे ना। तो सोच सोच के भैया अभी क्या करें, अब तो जिधर जलना ही पड़ेगा, मैं हल्ला गुल्ला करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, अभी भी ऐसा हो जाएगा चुपचाप से हो, ऐसा कर रहे होंगे। बोलो प्रकाश, मैं तुमसे बोलता हूँ, बहुत इसके प्रति समर्पित हो। इसलिए उस समय भी अनंत सुखरूप थे कि नहीं थे? वो छठवें गुण स्थान और सातवें गुण स्थान में जो सुख होता है वो उन्हें उस जलते वक्त था कि नहीं था, मैं जानना चाहता। अभय जी, मैं पंडितों के लिए बोल रहा हूँ ये बात, बाकी के लोगों की समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। गांधी जी ख्याल में आएगा नहीं? हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, उनमें रंज मात्र भी कमी थी क्या? मैं पूछता हूं कि जब भी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जल रहे थे और उसी वक्त में गुणस्थान भी चढ़ रहे थे, सैनी भी चढ़ रहे थे, तो उनका आनंद बढ़ रहा था कि दुख बढ़ रहा था? बोलो, हमें वो दुख ही दुख दिखता है, बाहर का दुख ही दुख दिखता है। अब उसके हम चित्र बना बना के मंदिरों में लगा देते हैं, अब उसकी मूर्तियां बना बना करके भी आग लगी मूर्तियां बना बना देते हैं, और घोर तपस्या क्या है? घोर तपस्या तो अनंत आनंद रूप है भाई साहब। शुक्ल ध्यान जैसी घोर तपस्या, एकत्व वितर्क पृथकत्व वितर्क जैसी, इससे बड़ी कोई घोर तपस्या है? क्यों क्यों राजेंद्र, क्यों नहीं है? क्योंकि तपों में ध्यान एक तप है कि नहीं? एक नहीं, सबसे बड़ा तप है। अनशन तप में एक बरस का अनशन करो तो मोक्ष जाने की गारंटी नहीं है, और अंतर होने तक ध्यान करो तो केवल ज्ञान हो गए मोक्ष जाने की गारंटी है। और सबसे बड़ा तप, और उन चार ध्यानों में तीन की छुट्टी, तो चौथा ध्यान वो सबसे बड़ा, और चौथे ध्यानों में पहले दूसरे को छोड़कर तीसरा चौथा सबसे बड़ा ध्यान। अब ये एक पृथकत्व वितर्क एकत्व वितर्क में थे, जब केवल ज्ञान हुए ना उन्हें, तो वो महातपस्वी थे कि नहीं थे? लेकिन हमने जब तपस्वियों के नाम गिनाए तो बाहुबली को नंबर मिल गया ज्यादा। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मैं आपकी तरफ से शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जिनवाणी में भी व्यवहार में से ऐसी बात है कि सम्यक दर्शन के निसंकेत अंग में एक चोर पास हो गया, टॉप यूनिवर्सिटी में टॉप एक चोर ने किया, नहीं आया समझ? और मैं संबंध भजन में लिखा पावधनांजन चोरोंगो तो अनंत मति स्मृता, में किससे शिकायत करने जाऊं और किस किस से विरोध करूं? आप कहें अभी लाएंगे प्रमाण निकाल निकाल के, ये सास में लिखा, ये धवल में लिखा, ये श्राप का दाल में लिखा, तुझे समझना है तत्व के नहीं, तो बंद करी धंधा। ये हमारे माथे पे छाती पे बंदूक की गोली लगाएगा ना तो तत्व नहीं समझ पाएगा। हमको फांसी पे चढ़ाना चाहता है, हमको संबंध भद्र के विरुद्ध खड़ा करना चाहता है, हम नहीं होंगे खड़े, क्या करें? लेकिन कुछ लिखा है ना, तावदांजन चोरोंगो ततो अनंत मति स्मृता, तो अंजन नाम का चोर प्रसिद्ध हो गया। अब मैं कहता हूं कि वो अंजन नाम का जो चोर था वो उसकी किस अवस्था को समंत भद्र ने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, हम वो उसे तो पकड़ने की हम कोशिश नहीं करते हैं, तो चोर लगा ना तो हम चोरी वाली अवस्था को पकड़ते हैं, और हमने कहानी बना ली ऐसी कैसी, केवल राजा की रानी का हार चुरा के भागा था, कि हार क्यों चुराया था, क्योंकि जो उसकी बेस्या थी ना प्रेम का, उसने कहा था मुझे रानी का हार चाहिए, नहीं मैं तेरे से प्रेम नहीं करूंगा, तो वो बेस्या कामी भी था, तो चोरी करके भाग रहा था। अब वो ऐसा आदमी और आते आते, और क्यों सेठ वचन परिणाम, सेठ का वचन प्रमाण है बस, और आड़म ताड़म कछु न जाना, यहाँ तो कहते हैं एक अक्षर कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मैं पूछता हूँ ये नमोकार मंत्र का सम्मान है कि अपमान, कि आड़म ताड़म कछु न जानम, मैं ये कहूंगा गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा है कांजी स्वामी ने, हम कुछ नहीं जानते कांजी फांजी को, तो कांजी स्वामी का अपमान है का सम्मान
है? ऐसे आरम तारम कछु नहीं जाने में नमोकार मंत्र का सम्मान है का अपमान?
और सेठ वचन पर मैं तो सेठ के वचन को प्रमाण मानता हूं। कौन सा सेठ? जो खुद ही संशय में पड़ा हुआ है, उतर रहा है वो चल रहा है, उतर रहा है वो चल रहा है। सर्वज्ञ का वचन प्रमाण है कि उस संशय वाले सेठ का वचन प्रमाण है? और उसे हो गई विद्या से क्या हो गया? आदमी से पक्षी हो गया क्या? हो गया गजब हो गया, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। इन सब मक्खियों को आकाशगामिनी विद्या सिद्ध है ना, समझना मक्खी मच्छर और खूब आकाश में दौड़ना है? अब वो कहानी को हमने बना दिया, बना कहानी हम किसने बना दी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने तो अकेला अपने लिया ना अन्य चोर। अब अन्य चोर कौन सा अन्य चोर उनके दिमाग में था? जिसे केवल ज्ञान हुआ ना, उसके पहले जब सम्मा दर्शन हुआ होगा ना, तब उसकी जो दृढ़ता हुई होगी ना, उसका कोई प्रसंग होगा। हो सकता संबंध भद्र ने उस प्रसंग को उदाहरण के तौर पर बनाया हो और हमने अपनी कहानी करके श्री भट्टारक महोदय ने कहानी बना दी और वो हो गई बनिया। मेरे कहने का मतलब कि ये बोझा लेके हम तत्व तो नहीं समझ सकते हैं। क्या हम जो कह रहे हैं उस तत्व को सब तर्क को समझो और ये बंदूक की गोलियां चलाना बंद करो यदि समझना है तो, क्योंकि तुम भी इतना बोझा लेकर के तत्व तो नहीं समझ पाओगे। क्या ये तो बहुत स्पष्ट है ना, ये है ना असंख्य गुण निर्जरा, जो जितने जितने आगे आगे के वो बढ़ती ना, कितने 11 स्थान है ना संजीव, सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद वियोजक, वो 11 स्थानों में असंख्य असंख्य गुणी निर्जरा है। और निर्जरा माने शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि माने आनंद की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि माने आनंद की वृद्धि है ना। और क्या, और क्या आनंद आनंद बढ़ रहा ना साथ में क्या नहीं, तो वो इतने स्थान है उनके तो वो बढ़ ही रहे हैं। चाहे उपसर्ग का काल हो, चाहे पुण्य के उदय का काल हो, चाहे पाप के उदय का काल हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी हम और थोड़े आधुनिक संदर्भ में देखें इसी बात को कि एक व्यक्ति है, अब बाहर का यश और अपयश तो उसके यशस्कृति कर्म अशस्कृति कर्म के उदय के अनुसार होता है, लेकिन उसका जो ज्ञान है, मान लो सम्यक दृष्टि भी हो, सिद्धांत और ज्ञान है, और जो भी उसकी पोजीशन हो, चौथे गुण स्थान की, पांचवें गुण स्थान की, वो उसकी हो, तो उसी का अशस्कृति के काल में वो कम धर्मात्मा हो गया और यशस्कृति के काल में ज्यादा धर्मात्मा हो गया। धर्मात्मा नहीं कहना मेरा उद्देश्य है, धर्मात्मा माने सुखी, जिसको खूब गालियां दी जा रही हैं उस वक्त वो दुखी हो गया, और जब खूब प्रशंसा हो रही है उस वक्त वो सुखी हो गया। वो कसौटी कौन सी वो लगाओ कि वो उसकी भूमिका कायम है। हो सकता है कि जब वो उसकी निंदा हो रही हो तो थोड़ा उसे खेद हो रहा हो, प्रशंसा हो रही हो तो थोड़ा हर्ष हो रहा हो सकता है चारित्र मोह के उदय में, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि उसके आनंद में और शुद्धि में क्या अंतर आया? ऐसा होता है कि मैं एक सेकंड में विद्वान हो जाऊंगा, एक सेकंड में मूर्ख हो जाऊं? ऐसा तो होता है कि एक सेकंड में सम्मा दृष्टि हो जाऊंगा, एक सेकंड में मिथ्या दृष्टि, घबराना नहीं, उसका तो प्रमाण है शास्त्र में, है ना, जे जे पंडित उपशमी क्षयोपशमी, तिनकी अवस्था तो लोहार की संदासी है, क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही, क्षण में मिथ्यात्व, क्षण में ज्ञान कला बासी है। लेकिन ये सब कैसे भूल जाएगा? वो ज्ञान तो कायम रहता है ना, मेरे कहने का मतलब ये है, लेकिन इस जगत का क्या स्वरूप है, हम उसके हिसाब से कोई निर्णय करेंगे।
अभय जी को मालूम होगा कि हम अध्यात्म शरीर सकल में व्याख्यान करने जाते हैं, तो एक दफे एक बरस 29 बरस में एक बरस उनने हमको महामहोपाध्याय की उपाधि दी है। मानो 29 बरस में और कभी कुछ नहीं दिया, वो भी एक चिदड़ा कागज का दिया जिसमें लिख दिया महामहोपाध्याय क्यों। और वो जो बात चल रही थी तो उन्होंने ये कहा कि इन्होंने सबके लिए कितना कितना किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हमने सबसे पहले डॉक्टर भारेल को महामहोपाध्याय बनाया, महामहोपाध्याय बनाया। अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कौन था, लेकिन संडे था ना तो सब ही रहते हैं ना, जो साल गए होंगे वो सब वहां होंगे। तो मेरा नंबर आया बोलने का, तो मैंने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि जिनने अभी महामहोपाध्याय बना इसके एक मिनट पहले मैं महामहोपाध्याय था कि नहीं था, पर जिसकी वजह से आपने मेरे को ये डिग्री दी है वो ज्ञान मेरे में था कि नहीं था, कि ये इसके बाद पैदा हो गया है। क्यों ये तो आपने समझ लो कि फीलिंग किया और आपने ये दिया, तो ये तो महामहोपाध्याय यदि मैं था तो था, और नहीं हुआ तो तुम्हारे कागज के टुकड़े से नहीं बना, नहीं हूं तो नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एक एक क्षण में अपने विकल्पों को बदलते हैं, तो ये उससे सामने वाले में क्या फर्क है। हम ही रोंग सिद्ध हो रहे हैं ना, हम ही गलत सिद्ध हो रहे हैं ना। तो एक क्षण बाद ये और एक क्षण बाद ये हो जाता है, एक क्षण बाद में आदमी बहुत बुरा होता है, फिर एक क्षण बाद में वो समझौते नाम की एक कुछ चीज होती है, कुछ करते हैं कुछ 2-10-5 मूर्ख बैठ के, बेटा थोड़ा तुम झुक जा, थोड़ा तुम झुक जा, ऐसा कर करा करके और आपस में हाथ मिलवा देते हैं, मालाएं डलवा देते हैं और वो सब अच्छे हो जाते हैं। एक मिनट में सब बुरे थे, एक मिनट में सब अच्छे हो जाते हैं। ये क्या खेल है कि उन्हें आप 10-5 मूर्ख कह रहे हो, कहा क्यों ये स्वरूप का जान रहे है? कहां होता है तुम्हारे कुछ करने से, क्या होता है कहने से, क्या होता है इससे, क्या बिल्कुल तुम्हारे विकल्प हैं क्षण क्षण के, इससे किसी का कुछ नहीं होता, इससे किसी का संबंध कहीं कुछ भी तीन लोगों तीन काल का नहीं है। कितना जैन दर्शन, कितना वैज्ञानिक धर्म, और पूज्य गुरुदेव जी जैसे बताने वाले उसका स्वरूप हमें, और इस मनुष्य भव में हमारे हाथ लग गया, पर हम कितनी कितनी व्यर्थ की बातों में अपने उपयोग को खराब करते हैं, समय खराब करते हैं, शक्ति खराब करते हैं। एक एक क्षण इसका कितना कीमती है आज दादा, जो जितना अच्छा विद्वान है, जो जिसकी पकड़ जितनी अच्छी है, उसका उतना समय ज्यादा कीमती है। क्या क्यों? क्योंकि ये कीमती समय का उपयोग नहीं हुआ तो ये कीमती समय खड़ा रहने वाला नहीं है। क्या हमारा तुम्हारा थोड़ा सा अनबन हो गई तो बनी रहेगी तो क्या फर्क होने वाला है, और मिट जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा, बनी रहने दो ना, और मिटे तो मिट जाने दो ना। अरे मिटेगी तो कसाई के दमन से मिटेगी, कसाई से कम होगी तो मिटेगी, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये मार मार के मुसलमान बनाने से, शोरबा पिलाने से आज तक कोई मुसलमान नहीं बना है। तो जैन धर्म ऐसा नहीं है, ख्याल में आई ना, इसे हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। आज जो अपन गाथा पढ़ने जा रहे हैं, गाथा का अर्थ अपन ने कल किया था, और आज जो टीका का अर्थ है, अमृतचंद्राचार्य की टीका बहुत गजब की है। एक एक पंक्ति
बहुत कठोर शब्द आएंगे इसमें, जो मैंने अभी बोला इससे भी कई गुणे कठोर शब्द हैं इस टीका में। देखो मैं पढ़ता हूं, समस्त कर्मों के पक्ष के छह से प्राप्त होने वाले आत्मलाभ रूप मोक्ष, ये मोक्ष की परिभाषा सुन लो। मोक्ष किसे कहते हैं? विप्र कर्मो मोक्षो मोक्षा नहीं दिया क्या? कर्मों के पक्ष का जो क्षय हुआ उससे जो हमें आत्मलाभ हुआ, माने हमें आत्मा ज्ञान में क्या ध्येय बना, श्रद्धा का ध्येय बना, ध्यान का ध्येय बना, उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष रूप है और मोक्ष हेतु है ये मोक्ष। कौन सा मोक्ष है ये? वो ऊपर वाला मोक्ष नहीं है ये? कोई गुणस्थानातीत मोक्ष नहीं है ये? तो कहते हैं कि जो हमको कर्म का पक्ष छूट के आत्मा का पक्ष हुआ ये मोक्ष। चौथे गुणस्थान में मोक्ष बोलते हैं जैसे आप। देखो मोक्ष की अभिलाषा करके, यानी जब तुमने मुनि दीक्षा ली थी, अथवा जब तुमने अनुव्रत लिए थे, अथवा जब तुमने इस धर्म के लिए पधारे थे, जरा सुनना, मोक्ष की अभिलाषा करके मोक्ष की कारणभूत, अब जो तो मोक्ष हो गए, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र स्वभाव वाली परमार्थ भूत ज्ञान भवन एकाग्रता, ये तीन तो नाम है लेकिन ज्ञान भवन रूप एकाग्रता, तीनों का आत्मा के सन्मुख होना, उनको ज्ञान भवन बोलते हैं। श्रद्धा का ज्ञान भवन, ज्ञान का ज्ञान भवन और चारित्र का ज्ञान भवन ऐसा आता है। ऐसी एकाग्रता लक्षण वाली समय सार भूत सामायिक की प्रतिज्ञा करके, अब वो समय माने भगवान आत्मा और वो ज्ञान का गेज जिसमें बनता है, ऐसी सामायिक की तुमने प्रतिज्ञा की थी। वो मुनिराज के लक्ष्य से बात कर रहा है। प्रतिज्ञा काय की थी? माने हमने तो ऐसी नहीं करी थी। अरे मुनि दीक्षा लेने का अर्थ है ऐसी होते ही है, इसके बिना मुनि दीक्षा होती ही नहीं। करके जो जीव दुरंत कसाय चक्र को पार करने में नपुंसकता के कारण, क्या कह लिखा है? देखो कि जो कसाय का चक्र था वो दुरंत है। दुरंत माने दूर है अंत जिसका, दिल्ली बहुत दूर है अभी। दुरंत कसाय चक्र के को पार करने में नपुंसक है ये आत्मा। आत्मा मैंने हर आत्मा नहीं, जो भी है, नपुंसकता के कारण परमार्थ भूत ज्ञान के भवन मात्र और ज्ञान का होना उसका नाम सामायिक। सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को प्राप्त ना होते हुए ये पोजीशन गई परमार्थ में अस्तित्व। इसका अर्थ जो किया था ना परमठ बाहिरा का अर्थ किया इतना। जैसे देखिए कि आप अपने अपने घरों से इधर आए शिविर में, जो भी आए, हम तो ये मान के चलते हैं कि 18 दिन के लिए जो आया है, आजकल बहुत जमाना ऐसा है कि एक मिनट की फुर्सत निकालना किसी को बहुत कठिन है, तो वो 18 दिन का समय निकाल के आया है और परदेश कलेश नरेशन को, परदेश में तो राजाओं को भी तकलीफ होती है। आपके घर में दो कमरे का भी मकान होगा तो कम से कम दो कमरे तो आपके पास होंगे, यहाँ तो एक कमरे में भी किसी दूसरे को शेयर करना पड़ता होगा, क्यों? और किस दालान में पड़े होंगे कि कहीं हॉल में कहीं पड़े होंगे, 18 दिन तक इसमें रहना पड़ेगा ना। और भोजन कितना ही बढ़िया बनाए, बढ़िया माने कोई बढ़िया का मतलब बढ़िया नहीं होता है, वो हमारे मन के अनुकूल हो ना, जो आपके लिए सबसे बढ़िया है वो हमारे लिए सबसे खराब है, क्यों? एक रोटी सुबह खाते हो एक शाम को खाते हैं फिर भी रसोईया साथ ले जाना पड़ता है, नहीं तो एक रोटी नहीं मिलती है, क्या सुरेश जी? मैंने प्रतिकूलता तो है ही, मेरे कहने का मतलब आप चाहे जितनी प्रशंसा करो झूठी सच्ची, और हमारे व्यवस्थापक कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाने की कोशिश करें, मैं उन पर भी आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, है भी नहीं, लेकिन वो अनुकूल हो ही नहीं सकती है। और फिर 18 दिन आप यहां निकालेंगे तो मैं कैसे मानूं यहां कोई लौकिक लाभ तो होने वाला है नहीं, क्यों? पैसा वैसा कोई मिलने वाला है नहीं, और ये शिविर के खर्च के नाम पर कुछ लोग तुमसे कुछ वसूल कर लेंगे। मैंने फिर भी है ना, हम कैसे माने कि आप किसी लौकिक लाभ से आए हैं, और फिर भी आप ऐसा कहो कि हम तो चले ही आए अब की बार क्या, अरे कुछ नहीं मिलेगा तो मिलना जुलना तो हो ही जाएगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने हमारे मुंह में ऐसे एकदम खट्टा खट्टा आ गया, क्या करें अभी, हमारे इतने इस महाप्रयास को आपने मिलने जुलने का अड्डा बना लिया है, कितना तो लाभ हो गई, ये लाभ है, ये मिलना जुलना लाभ है, क्यों बाबू भाई? अरे हम तो जिससे वो मुनिराज के लिए कह रहे थे, मैंने आपको अपने जैसे लोगों पर घटित किया है कि तूने जो सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर के तू मुनि हुआ था, तो आप किन झंझटों में पड़ गया है? मैं कहता हूं हमें क्या मतलब उन मुनियों से, मतलब तो बहुत है, हमारी परम पूज्य है, लेकिन फिर भी झंझट में नहीं पड़े तो हम अपनी सोचे ना कि हम इस धर्म के क्षेत्र में किस भावना से आए। चार अक्षर सीखने आए ना, तो नहीं सीख पाएंगे तो भी ये फायदा है, वो तो भी फायदा हमें नहीं चाहिए, वो हमें सुनना नहीं है। क्यों नहीं सीख पाएंगे? सीखेंगे ही। सुबह 5 बजे से लेकर पूज्य गुरुदेव श्री हमें जगाते हैं, हम उनकी वाणी से देखते हैं ना, और शाम तक अंत तक 10 बजे तक समत प्रकाश जी अब हमको जगाए रखते हैं, तो फिर क्यों क्यों ऐसे जाएंगे? ऐसी झूठी कल्पना क्यों करना, उसके भरोसे क्यों रहना? हम तो उस परम सत्य को सुनने जाएंगे, हमें तो परम सत्य जो हमारे सामने जिनवाणी का है हमें वो जानना है, और उसको हम जान के ही रहेंगे पूरे संकल्प के साथ। हम अपनी बात को करें ना, देखो क्या लिखते हैं अभी, नपुंसकता के कारण सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को प्राप्त ना होते हुए अब कहां उलझते हैं वो देखो। अत्यंत स्थूल संकलेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त होने पर भी, अब एक किन जीवों की बात कर रहे हैं कि अत्यंत स्थूल माने पाप कर्म, कि पाप कर्म से जो निवृत्त हो गए हैं उनकी बात है। जमीन के अंदर नहीं खाते, अभिवृत्त नहीं करते, आपस में लड़ते नहीं है, कसाय नहीं करते हैं, समझ गए आप? लिखा ना अत्यंत स्थूल संकलेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त होने पर भी, संकलेश परिणाम रूप माने पाप भाव रूप, अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम, देखो वहां भी अत्यंत स्थूल, ये भी अत्यंत स्थूल, कौन अभी फिर मैं गिना हुआ तो फिर देख गए एक पूजा पाठ वेद शील संयम, ये सब ये अत्यंत स्थूल शुद्ध परिणाम है, विशुद्ध परिणाम रूप कर्मों में प्रवर्त रहे हैं। स्थूलता तो छोटी छोटी नहीं, वे कर्म के अनुभव के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से संतुष्ट हैं। क्या कह रहे एक पंक्ति तो देखो क्या कह रही, कहते कर्म थोड़ा भारी था वो थोड़ा हल्का हो गया, इसमें खुश है, गुरुत्व लघुत्व से संतुष्ट हैं, थोड़ा तो कम हुआ ऐसा तो। अरे हम थोड़े के लिए नहीं आए हैं भाई साहब, ये हमें मनुष्य थोड़े के लिए नहीं मिला है, हमें तो पूरा चाहिए। अंग्रेज लोग कहते थे ना कि तुम म्यूनिसिपैलिटी को तुम्हारे हाथ में सौंप देते, चलो प्रांत तुम्हारे हाथ में सौंप देते, केंद्र हमारे हाथ में रहने दो, हम कहते हमें नहीं चाहिए, हमें तो पूरा भारत का पूरा हम वो चाहिए, पूरा हम स्वतंत्र है ना। अत्यंत स्थूल कर्म के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए, ये सब संस्कृत में है, जो संस्कृत जानते हैं ऊपर की पंक्ति देख सकते हैं, वो ये मैंने खुद अनुवाद किया है इसलिए इतना खड़ा आ गया है ना, लेकिन अक्षर अक्षर पूरा ऊपर से मिलान कर करके किया है। संतुष्ट चित्त होते हुए भी स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर, अब लक्ष्य को ही सूक्ष्म नहीं कर रहे हो। चल इतना फायदा तो है, इतना फायदा तो है, ब्लड प्रेशर तो कम हो जाएगा ना, इतना इतना क्या कम फायदा है। अरे जिससे मोक्ष मिलता है, जिससे कर्म करते हैं, जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ध्यान से तू ब्लड प्रेशर कम करना चाहता है और उससे संतुष्ट है, क्यों? ये स्थूल लक्ष्य नहीं है, क्या कर रहे हैं? उमा स्वामी को तो बोलो, ध्यान की परिभाषा में 18 सूत्र लिखे और 18 सूत्र तत्वा सूत्र में हैं, और उनकी राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में, सर्वार सिद्धि में और जितनी हिंदी की वचन काये हैं उनमें, बस उतना ही ध्यान का वर्णन सर्वत्र है। खूब सब आचार्यों ने यहां से वहां से पलट के देख लो तुम है, लेकिन मूल सूत्र में एक चीज को ही ध्यान कहा उन्होंने, बस क्या उत्तम सेन नहीं सा काग्य चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात रखा, जिससे वो काम होगा, मन उसका काम होगा। ध्यान 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 की इतनी महिमा, इतनी महिमा। अरे भले आदमी ध्यान की महिमा है तो कोई अर्ध ध्यान की महिमा थोड़ी है, तो ध्यान की महिमा, ध्यान नाम से तो बहुत चीजें हैं, निकाल निकाल के लाता है वहां से, देखो ये लिखा ये लिखा है, अरे ये लिखा लेकिन ये उसके लिए लिखा है भाई साहब, और ध्यानों में तो ये भी है, छोड़ने लायक भी ध्यान है। मैंने एक दिन कहा था, अपनी किताब में भी लिखा है कि इन ध्यान के शिविरों लगाने वालों से पूछो और जाकर तुम देखो कि एकाध दिन उन्होंने जो 100 घंटे का क्लास लगाई होगी बाबू भाई, तो एक दिन में एक वाक्य भी बोला है कि ऐसे भी ध्यान होते हैं जिन्हें छोड़ना चाहिए, और एक शब्द निकाल निकाल के लाओ मेरे पास। कि ध्यान की बात समझाते समझाते ऐसा समझाया हो कभी कि कुछ ध्यान ऐसे भी होते हैं जिन्हें छोड़ना चाहिए। वे तो करने वाले ध्यान के गीत गाते हैं ना, तो करने वाला ध्यान तो अकेला वही है जो अंतर्भूत में से केवल ज्ञान होता है। कहने में धर्म ध्यान, तो धर्म ध्यान है ना, आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, तो ये तो सब स्वाध्याय रूप है, ये तो हमारा सुबह से शाम तक ध्यान ही क्या, तो सवेर है जी आज्ञा भी, तो भगवान की आज्ञा क्या है, करुणानियोग की क्लास, करुणानियोग की क्लास, आज्ञा विचय माने करुणानियोग, भगवान की आज्ञा में माने माथा पच्ची मत करो, भगवान ने कह दिया कि आलू में अनंत जीव होते हैं, वे नहीं खाना, बस नहीं खाना, खत्म। कौन कहता है देखो हमें बताओ, विज्ञान को सिद्ध कर दिया, हम सिद्ध कर देंगे, ना हमें तेरे सिद्ध करवाना है और ना हमें तेरे को सिद्ध करना है, हम अनछने पानी में बहुत जीव तुम्हें दिखा देंगे, ना हमें देखना है और ना हमें दिखाना है, भगवान ने कह दी ना, बस खत्म। अम्मा ने कह दी ना कि ये नहीं खाना, बस हमें नहीं खाना, बस खत्म, हमें तुमसे बहस नहीं करना, ये आज्ञा भी चाहे बोलो, उपाय भी चाहे, ये सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ये सब जो वर्णन चल रहा है समय सार वगैरह का, ये उपाय भी चाहे, अपाय भी चाहे, मैंने मोक्ष मार्ग कर सके 8 अध्याय 7 अध्याय, वो अपाय भी चाहे माने नेगेटिव, मोक्ष के अपाय माने उपाय नहीं है ये इस संसार के कारण, विपाक विचय ये पूरा करना नहीं होगा अन्ना जी का, ये विपाक विचय है, संस्थान विचय ये हमारे प्रकाश छाबड़ा का भूगोल, हमारे क्या किसका संजीव गोदा का, ये सब क्या है संस्थान विचय है, तो सुबह से शाम तक हमारे यहाँ सब चल रही है, सब चलाएंगे हम, सब क्लास में पढ़ाते कोर्स में भी सब है, तो हमारे यहाँ तो चारों धर्म ध्यान तो चल ही रहा है, और निश्चय धर्म ध्यान में तो निश्चय में तो किसी की जरूरत होती नहीं है, वो तो बिल्कुल एकांत ही होता है। कि हमारा ये ध्यान का शिविर है कि नहीं है, ध्यान से निर्णय करो क्यों, और मुझे जो वो लोग कर रहे हैं उनमें से कहीं भी जनागम में बता दो कि उस तरफ का कहीं ऐसा हो तो इसकी कहीं कहीं चलते ही नहीं।
कहां कहते देखो कहां थे, विशुद्ध गुरुत्व लघुत्व प्राणी मात्र से संतुष्ट चित्त वाले होते हुए स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर संकलेश परिणामों को छोड़ते हुए भी समस्त कर्म कांड को जल मूल से नहीं उखाड़ते। ये राजेंद्र जी आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं, समस्त कर्म कांड को जल मूल से नहीं उखाड़ते। वो कौन सा कह रहे वो क्या रख करके थोड़ा सा बैलेंस बना लेना चाहिए। तो ये इसका क्या करूं कि समस्त कर्म कांड को जल मूल से नहीं उखाड़ते। कुछ को तो उखाड़ते ही हैं सब, अशुभ को तो सब ही उखाड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी बात सुनता नहीं हूं, सुन लेता हूं, बहुत सोचता हूं, जरूरत पड़ती तब कहता हूं। महाभाग्य से हमको कोई रास्ता मिल गया है तो उससे आप हमको और गिराना चाहते, बैलेंस के नाम। अरे जीवन में जो होगा तो भूमिका अनुसार ही, उसका कहां निषेध है, लेकिन निर्णय तो ये करना पड़ेगा कि जल मूल से उखाड़ना। कोई कर्मकांड पुण्य पाप का कोई भाव, किसी भी टाइप का शुभ भाव, आप तो उस महाशुभ भाव से हमको एडजस्ट करने की बात करते हो कि जो महाअभक्ष है, जो हम उदाहरण मैंने कहा क्या दिया था याद है, जो एक गोली खाना पाप है तो उसका पूरा दवा खाना पुण्य कैसे हो जाएगा। तो जब महापाप को हम उखाड़ने की बात करते हैं तुम उसमें हमसे एडजस्ट कराना चाहते हो कि कोई अपेक्षा लगाकर कोई ऐसा कह के बोलो कुछ तो तकलीफ दूर होती है, कुछ होता है, अब उन्होंने किया तो कौन सा बुरा काम किया। चले बुरा नहीं किया, माने ये काम बुरा नहीं है, उनने किया कि नहीं किया जाने दो, लेकिन ये काम बुरा तुम बुरा ही नहीं मान लेना कि कौन सा बुरा किया, ये बुरा किया ना हम कह रहे। मैंने अभी श्रद्धा के लेवल पर, समझ के लेवल पर हम अब दुरुस्त नहीं होना चाहते। इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को बंध का कारण मानकर व्रत नियम शील तपादि शुभ कर्मों को बंध का कारण होने पर भी उन्हें बंध का कारण न मानकर मोक्ष के कारण रूप से अंगीकार करते हैं, अर्थात मोक्ष के कारण रूप में उनका आश्रय करते हैं। ये अमृतचंद के पूरे शब्द हैं जो मैं आपको पढ़ दूं अक्षर अक्षर। जो संस्कृत वाले जानते हो ऊपर संस्कृत टीका पढ़ के बता दो, निकाल के बताओ कि यहाँ कहाँ इनमें एक अक्षर का एक कोमन का अंतर है। अमृतचंद्राचार्य ये सब कह रहे हैं। हम जलझूर मूल से उखाड़ने की बात करते हैं पर आप कोई ना कोई रस्ते से उसे रखने की बात करते हो। श्रद्धा के लेवल पे तो उखाड़ रहे हैं, क्रिया के लेवल पर तो भूमिका के अनुसार ही उतरे उखड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो भूमिका के विरुद्ध काम कर सके। नीची भूमिका में ऊपर काम नहीं हो सकता, ऊपर की भूमिका में नीचे का नहीं हो ही नहीं सकता। यदि करोगे तो भूमिका गिर जाएगी। यदि इसका मैं शुद्ध हिंदी कहूं तो फिर आप बहुत घबराएंगे। कहूं मैंने पूछा था बाबू भाई से कि बाबू भाई मैंने सर्वज्ञ का आगम जितना पढ़ा है उस सब में ये पढ़ा है कि सम्मा दर्शन होने के बाद में फिर पहली प्रतिमा होती है, फिर दूसरी प्रतिमा होती है, दूसरी प्रतिमा में अणुवृत होते हैं, फिर पांचवी प्रतिमा में जाकर के संबोध नहीं हो, सातवीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य होता है। भगवान ये कहते हैं कि सातवीं प्रतिमा में के पहले ब्रह्मचर्य नहीं होता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि होता है जन्म, क्या कह रहे हैं? मैं आप हो ब्रह्मचारी कहने में ये पूछना चाहता हूं। बाबू भाई क्या कह रहे? सिद्धांत की बात कह रहा हूं मैं। बाबू भाई के ब्रह्मचर्य में मुझे रंज मात्र भी विकल्प और शंका हो ऐसी बात नहीं है। वो ये सबसे ज्यादा आदर्श पुरुष था वो, और मेरे जितने अधिक नजदीक था, मेरा जितना बड़ा सहयोगी था, मुझे आज तक कोई दूसरा दिखा नहीं है। आप समझे ना, लेकिन हमने हम आपस में ऐसी बात करी कि तुम्हारी माने के जनागम की माने, ये भूमिका के विरुद्ध है या नहीं। गुरुदेव से गुरुदेव फरमाते थे तो भैया मैं तो निर्वृत्ति के लिए बोलता हूं, बोलते कि नहीं बोलते थे, माने हम ब्रह्मचारी नहीं मानते तुम्हें, ये निवृत्ति के। फिर तो अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्रह्मचारी है, क्यों उन्हें राजनीति के लिए निवृत्ति चाहिए थी। अभी अपना राहुल गांधी भी है, वो भी कहता है शादी करने की फुर्सत ही नहीं है, उसे राजनीति के लिए समय चाहिए, हमें समाज नीति के लिए समय चाहिए, किसी को मुकदमा लड़ने के लिए समय चाहिए, किसी को और चक्करों के लिए समय चाहिए, और उसकी वजह से नहीं मिल रहा पाया, क्यों ले लिया, कैसे, किस चक्कर में ले लिया, क्या ले लिया, अब हम क्या करें उसको। और उसको भुनाना चाहता है धर्म के नाम पर, उसकी कीमत में डिग्री जैसा उपयोग करता है, बाल ब्रह्मचर्य कहा है, कौन 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 सा बाल ब्रह्मचारी जानता है क्या होता है, बाल माने क्या होता है जानता है, बाल शब्द का अर्थ ही समझ में आता होता तो अपने को गौरव से बाल ब्रह्मचारी नहीं कहता होते ही नहीं। महेंद्र कुमार जी, भूमिका के मैंने कहा था एक वाक्य कि भूमिका से ऊंचा आचरण भी उतना ही बड़ी भूल है जितनी ऊंची भूमिका में नीचा आचरण। मुनि भूमिका में ब्रह्मचर्य मतलब मन वचन काय से जो भी अपने नियम मर्यादाएं हैं उनकी जरा भी नीचे उतरे तो उसके लिए गड़बड़ है, और हमने भूमिका के अनुसार सब होता है तो वो होगा, हुए बिना रहेगा नहीं, उसे कौन स्वीकार नहीं करता है। और भूमिका के कम में करना तो वो ऐसा है कि तरदा बेटा सूली पे भला करे भगवान। टोडर मल जी ने कहा है किन्हीं किन्हीं जीवों को सम्मा दर्शन होने के बाद वृत होते हैं सब जीवों को, और किन्हीं कोई कोई पहले ले लेते हैं और फिर उन्हें बाद में सम्मा दर्शन हो जाता है, लिखा है। लेकिन उनको वे उसे धर्म माने तो प्रतिबंध लग गया, फिर नहीं होगा। उसे वे धर्म नहीं माने और उसकी वजह से रंचमात भी अपने को बड़ा नहीं माने तो उन्हें चांस है कि बाद में सम्मा दर्शन हो जाएगा। क्या ये ब्रह्मचारी लाभानंद जी थे, आप बहुत पहले जानते थे ना, जब मैं यहां आई आया था तो मैं हमारे दोस्त भी थे यहां आए, पंडित जी आपने मेरी ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो, क्या क्या कह रहे, क्या व्यवस्था करो, सब व्यवस्था है, ठीक है, आप शांति से बिराजो, हो जाएगा सब हो जाएगा। नहीं नहीं, आपकी ड्यूटी है, आपको ये करना चाहिए। क्या क्या ड्यूटी है हमारी, तुम हो क्या, बताओ तो कौन सा गुणस्थान है तुम्हारा, तुमसे ही पूछा, तुम बता दो है? अरे भाई हम और तुम बराबरी में तो खड़े हैं, क्या फर्क है बताओ। अब हम अपनी भी व्यवस्था कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे, लिख रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, किताबें लिख रहे, और तुम कुछ नहीं कर रहे और अपना भार हमारे माथे पर डालना चाहते हो। अरे थोड़ा भार हमारा संभालो, दो बच्चे तुम संभालो, हमारे दो हम संभालेंगे क्या है? तो हम दो किताबें ज्यादा लिखेंगे ना, ज्ञान है गांठ में, ना अध्ययन है, ना मनन है। मेरे पिताजी से मैं एक बात कहता था, वो बहुत मारने का, समझना बहुत मारने कि मेरे पिताजी बहुत स्वाध्याय करते थे और ने छोड़ दिया था सारा धंधा पानी, बिल्कुल घर की बात, पचास चार छह छह आठ आठ घंटे। फिर ये कहते भैया मुझे याद नहीं रहता है, तुम्हारी तो बुद्धि अच्छी है। ये सच्ची घटना होता है ना, एक एक अक्षर सास की गद्दी पे बैठ के ऑटोमेटिक समय सार पे हाथ रखा हुआ है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, तुम्हें याद हो जाता है, तो हमारी बुद्धि उतनी अच्छी नहीं है इसलिए हमें याद नहीं होता है। तो मैं कहा देखो दो बातें हैं,
एक तो मजदूरी से काम होता है और एक ठेकेदारी से। क्या तो ये काम करवा दे, सारा मलबा पड़ा है बाहर फेंकवाना है, तो कितना पैसा लोगे हम नहीं जानते बाकी, और नहीं तो तुम मजदूरी करो सुबह से शाम तक फेंको, इतना फेंक जाएगा इतने पैसा मिल जाएंगे। दो तरह से होता है ना। तो आपकी यदि बुद्धि स्थूल है और आपको याद नहीं होता है तो आप मेरे को ये वचन दो कि मैं 8 घंटे स्वाध्याय करूंगा और फिर आपको एक भी गाथा याद नहीं हो तो मैं नहीं पूछूंगा। और यदि आपको ये भरोसा है कि मेरी बुद्धि अच्छी है तो ये बता दो कि बस मैं 20 गाथाएं याद करके शाम तक बताऊंगा, तो मैं 1 मिनट नहीं पूछूंगा कि तुम सो रहे कि उठ रहे कि बैठ रहे कर रहे। फिर आपने आगे करना, फेंके तो चलो, चलो बोलो क्या करना है। दो ही हाथ लड्डू नहीं चलेंगे। स्वाध्याय भी या मजदूरी से करो या ठेके पे करो, ये तो उसका नियम है। हम पढ़ते थे, बड़े दादा को मालूम है, हमारी क्लास में मैं सबसे छोटा था उम्र में, मेरे से बड़े दादा भी हम एक ही क्लास में थे, 2.5 वर्ष बड़े दादा थे और बाकी सब 5 वर्ष बड़े थे। और जिस हमारे गुरु जी आते थे राजधर लाल जी, तो मैं 7 बजे भी शाम के सो रहा हूं तो कितने जगाऊ मत उसे, नहीं बिल्कुल नो डिस्टर्ब, और बाकी कोई सो जाए तो लेने के देना पड़ जाता, क्यों उसको पाठ अपना याद रहता है, उसे तैयार तो रहता है, तो ठेके से काम कर लो, समझे ना। या फिर पढ़ो तुम, हम बताते हैं शादी बैठो आपके 11 बजे तक पढ़ो, फिर सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना, और फिर जितना याद होगा उतना देखी जाएगी। तो भाई तुम कुछ तुम्हारे पास बताओ ना क्या है, तुमने घर छोड़ा, दरबार छोड़ा, बार छोड़ा, तो अभी तुम्हारे पास गांठ में कुछ ज्ञान होना चाहिए ना, कुछ पढ़ना पढ़ाना होना चाहिए ना, कुछ ऐसा ऐसी चीज होनी चाहिए ना, उसमें तो जीरो है। क्यों तो फिर काय के बाल और काय के ब्रह्मचारी, तो ये जो वस्तु का स्वरूप है हमें उसकी मर्यादा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते, उसका तो हमें पालन करना ही पड़ेगा। और हमारी आत्म शांति का उपाय इसमें है, हम इसके मार्ग पर चलें, यहां वहां भटके नहीं।